अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे समझते हो, सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो व कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे, तो माया आती है या सभी माया जीत हो, क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। माया चींटी है या शेर है? तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या? जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमजोर होते हो तो चींटी भी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को भूलते नहीं है, आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो भूल नहीं सकते। लेकिन भूल जाते हो इसलिए रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगा। तो क्या सुना? पहले तो कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो व कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे, तो माया आती है या सभी माया जीत हो, क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। आज भी बाबा ने कहा है अमृत वेले क्या करो, स्वयं को तिलक दो। तिलक विजय की निशानी है, मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वयं को तिलक। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। तो माया चींटी है या शेर है? तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या? जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब हम कमजोर हैं तो चींटी भी शेर जैसी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कभी इमर्ज करो, अमृत वेले इमर्ज करो। तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जितनी आत्मा अमृत वेले श्रेष्ठ स्मृति में तिथि में स्थित रहती है उतनी ही वो शक्तिशाली रहती है। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को भूलते नहीं, आजकल का प्राइम मिनिस्टर भी ये नहीं भूलता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो ये सब कैसे हो? सहज हो, मेहनत नहीं। दो पुरुषार्थियों में से बाबा को कौन से पुरुषार्थी पसंद है? जो दो देखता है वो हमेशा, कभी तीन देखता है कभी चार देखता है। आज बाप दादा ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे में दो देखे, ऐसे ऐसे देखे उसमें तीन देखे, कभी चार देखे, कभी चार सितारे, कभी दो सितारे, कभी तीन रेखाएं, कभी दो रेखाएं, अलग अलग चीजें देखता है। तो दो पुरुषार्थी देखे आज उसने, एक तो वो जो मेहनत करते हैं, एक तो मेहनत करने वाले जो केवल पुरुषार्थ कर रहे हैं परंतु प्रारब्ध अभी नहीं है, प्राप्ति अभी नहीं है। वो सोचते हैं कि बाप ने जो कहा एक का लाख गुना, वो अब का गायन नहीं है, वो भविष्य का गायन है। ऐसे जो है उनको थकावट, ऐसे जो है उनकी चेहरे से त्याग की लकीर है, भाग्य की लकीरें नहीं दिखती, त्याग दिखता है। थकावट है यहाँ, प्रालब्ध अभी नहीं है, प्राप्ति अभी नहीं है, मग्न है। वो सोचते हैं कि एक का लाख गुना अभी का गायन नहीं है, बात का गायन है। एक तो ये पुरुषार्थी है, दूसरे कौन से, जिनको थकावट ही नहीं है, मोहब्बत मोहब्बत है, यहाँ पर मेहनत है। तो ये मोहब्बत की गोद में, स्नेह की गोद में, स्नेह के पाव से चलते हैं, चलते नहीं है, चलते तो वो है, ये उड़ते हैं। तो स्नेह की गोद, स्नेह के पाव, मोहब्बत के पाव, वो मस्त रहते हैं, वहां सहजता है, थकावट का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हम नहीं चल रहे हैं, वो सोचते हैं हम चल रहे हैं, ये सोचते हैं हमको वो चला रहा है। संकल्प में भी सरेंडर, कितनी ऊंची अवस्था है कि हम चल ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो ही करा रहा है सब कुछ। वहां संकल्प चलाने की भी आवश्यकता नहीं, जहां संकल्पों का भी बाबा को भोग लगा दिया है, संपूर्ण समर्पण। तो दो पुरुषार्थी है, इनमें से बाबा को कौन से पसंद है? जब मेहनत करते हो तो पसंद है ना कि नहीं? थोड़े पसंद है, ज्यादा नहीं। तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या? बाबा माया को, विकारों को, जो कि संसार के लिए जहरीले सांप है, जिनको वश में करना उन्होंने असंभव कहा है, और तुम्हारे लिए विकार क्या है? चींटी। वो पुराने संस्कार क्या है? चींटी। वो परिस्थितियां क्या है? चींटी। प्रकृति से आने वाले विघ्न क्या है? चींटी। कभी कहते हैं चींटी है, कभी कहते कुछ है ही नहीं, अभी जो है ही नहीं उससे क्यों डरते हो? कभी कहते कागज का सिर, कभी कहते मरी हुई चींटी, कभी कहते खिलौना, कभी कहते शिकार है। जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमजोर होते हो तो छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी आ गई तो इतना भयभीत हो जाते हैं, हजार प्रश्न मन में आते हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। छोटी सी बीमारी अगर आ गई तो भयभीत हो जाते हैं। संसार के लोग थोड़ा कम भयभीत होते हैं, ब्राह्मण थोड़ा ज्यादा सोचते हैं कभी कभी, सभी नहीं, कुछ कुछ। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को विमर्श करो। अमृत वेले अमृत बट रहा है, कौन सी स्मृति को? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, वर्ल्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी, मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी। तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। अमृत वेले तिलक लगाओ, अमृत वेले का महत्व रखेंगे तो महान बनेंगे। अमृत वेले चेकिंग करनी है, आज कहा ना महीन चेकिंग, जो जितनी महीन चेकिंग करेंगे वो उतना महान बनेंगे। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को बोलते नहीं है, तो तुम भी सबसे बड़े आसामी हो, हु इज हु, तुम्हारा उसमें नाम है। संसार में हर क्षेत्र में वो इज वो होता है, क्रिकेट में वो इज हो, खेल में, मनोरंजन में, साहित्य में वो इज हो, हर चीज में। तो यहाँ भगवान का जो वो इज हो है उसमें हम है सबसे महान। आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को बोलता ही नहीं, उसको सदा याद रहता है। तो हमारा पोजीशन क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान, ये आत्मा से संबंधित है। भूलना क्या है? तीन चीजों को भूलना है। अब वो तो है, देह से ही संबंधित तीन चीजें। सबसे पहले तो भूलना है कि ये देह में नहीं हूं, दूसरा ना तो मैं पुरुष हूं और ना मैं स्त्री हूं। पुरुषत्व को भूलना है और स्त्रीत्व को भूलना है। क्योंकि मैं कुछ और हूं, न ये मैं पुरुष मैं नहीं हूं, न ये मैं स्त्री हूं। एक तो देह, एक पुरुष, और फिर इस देह के जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय भी मैं नहीं हूं। इन तीनों से भी मैं अलग हूं, मैं आत्मा हूं। तो ना तो, क्योंकि ये तीनों ही याद रहते हैं, ये तीन कभी नहीं भूलता। देह तो हमको पता है, परंतु जो प्रोफेशन है उससे भी डिटैच हो जाना है कुछ समय के लिए, या उससे डिटैच होने का अभ्यास। ये जो कार्य है ये तो केवल हो रहा है निमित्त मात्र, पर हमारा वर्क, हमारा कार्य तो है कि आज के मुरली में कहा बाबा, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? विश्व परिवर्तन, ये मुख्य कर्तव्य तो है, बाकी तो सब निमित्त मात्र है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण, ये हमारा मुख्य कर्तव्य। ये कर्तव्य आत्मा से संबंधित है, बाकी देह से संबंधित जो व्यवसाय है वो अलग। तो वो व्यवसाय चाहे वो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कुछ भी है, वो भी मैं नहीं हूँ, या देह भी मैं नहीं हूँ, और ये जो पुरुषपन का भाव और स्त्रीपन का भाव है, ये दो भी मैं नहीं हूँ। और चौथा ये जो नाम है इस देह का, वो भी मैं नहीं हूँ। इन सबसे मैं अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस स्वरूप में स्थित होना, बार बार स्वयं को इस स्वरूप में स्थित कराना। और फिर जब आत्मा हो तो आत्मा के कर्तव्य अलग है। आत्मा किस लिए आई है? विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, ये हमारा कर्तव्य है। विश्व परिवर्तन करोगे तो पहले स्वयं का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन। दो वाक्य आज के मुरली में, स्वयं का परिवर्तन करोगे तो विश्व परिवर्तन करोगे। अगर विश्व परिवर्तन के कार्य में लग गए तो स्वयं का परिवर्तन स्वतः ही होगा। दोनों ही सत्य है। ज्यादा सत्य कौन सा है? पहला अगर है तो दूसरा भी स्वतः हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर को भूलता नहीं है, उसकी पोजीशन कभी नहीं भूलता है, लेकिन भूल जाते हो। इसके लिए रोज अमृत वेले की स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगा। बार बार याद करना, मन को शांत करना और मन में संकल्प लाना, तो सीधा वो अंतर्मन में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड तक। जो हमें प्राप्त करना है उस संकल्प को बार बार करना, तो वो संकल्प सीधा अंदर जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि माताओं को नशा रहता है कि जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें प्राप्त है। दुनिया वालों ने ठुकराया लेकिन बाप ने हमें आगे किया। आज क्या कहा? दुनिया वालों ने ठुकराया और बाप ने ठाकुर बना दिया। द्वापर से तुम जिसकी महिमा गाते थे, अभी वो तुम्हारे गीत गाते हैं। जितनी तुमने गाई उतना वो तुम्हारे गीत गाते हैं, या उससे ज्यादा। तो माताओं को नशा रहता है कि जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें प्राप्त है। दुनिया वालों ने ठुकराया लेकिन बाप ने हमें आगे किया। अभी तीन भाषा वाले सामने बैठे हैं तो बाबू क्या कहेंगे? त्रिमूर्ति। बस ये वैरायटी भाषाओं का थोड़ा सा समय है, फिर तो एक भाषा हो जाएगी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म। कल की मुरली में भी था, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म। अभी वैरायटी भाषा है, ये थोड़े समय के लिए, फिर एक भाषा हो जाएगी। कौन सी एक भाषा होगी? ब्रिज। कौन सी भाषा होगी? देवी भाषा। संस्कृत। संस्कृत को देवी भाषा कहा जाता है, देव भाषा, देवनागरी। किसी ने कहा हिंदी। तो बाबा इनको कह रहे हैं तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना। अभी देखो स्थूल पढ़ाई भी हो रही है, रूहानी पढ़ाई भी हो रही है। हिंदी भी सीख रहे हो ना, हिंदी भी सीख रहे हो, अच्छा है। लगन स्नेह अच्छा है, कितना स्नेह है, कितना स्नेह है, बहुत अच्छा। सागर भी, सागर भी इसके आगे कुछ नहीं है, सागर भी इसके आगे कुछ नहीं है। जितना जो स्नेह में रहता है उतना ही बाप द्वारा पदम गुना स्नेह प्राप्त हुआ अनुभव करता है। अच्छा, सभी उम्र गुस्सा में होना, क्या से क्या बन गए हो, छोटा ग्रुप है यहाँ पे, क्या सुना, कमल पुष्प समान न्यारे, कमल पुष्प पानी में है परंतु पानी उसके ऊपर नहीं है, अलिप्त है, डिटैच्ड है, स्पर्श नहीं करता उसको, उसके पत्तों को। तो हम भी संसार में है परंतु संसार हमें स्पर्श ना करे, संसार में है परंतु संसार के भोग विलास और वासनाएं, संसार का प्रभाव, संसार की परिस्थितियां हमारे ऊपर अपना प्रभाव न डाले, डालेगी तो थोड़े समय के लिए, तुरंत उससे मुक्त हो जाए। एक तो ये, दूसरा मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये समान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। कैसे बनेंगे शक्तिशाली, पहले तो अमृत वेला स्मृति का तिलक लगाने से। ऐसी कौन सी धारणाएं करें कि जिससे आत्मा शक्तिशाली हो जाए, हाउ टू बिकम पावरफुल, क्या करें नागेश भाई, शक्तिशाली कौन है इस संसार में, जितना शक्तिशाली समान लेंगे उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। तो महान समान महान संकल्प से जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, तो जो जो संकल्प लिया जाएगा उसी अनुरूप हम बनेंगे। तो पहला है समान का अभ्यास, दूसरा मनन। कल की मूल्य की शुरुआत क्या थी, शुरुआत याद के लिए एकांत की जरूरत है, तो मनन भी कैसे, मनन ज्ञान का मनन, ज्ञान उतना शक्तिशाली नहीं बनाता है आत्मा को, ज्ञान का मनन उसे शक्तिशाली बनाता है। जितना हम ज्ञान का मनन करेंगे तब आत्मा शक्तिशाली बनती है। केवल ज्ञान सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे तो शक्तिशाली नहीं बनती है, एक एक पॉइंट को निकालकर उसका चिंतन जब करते हैं तो आत्मा, विचार सागर का मंथन करना, ये जो सागर है विचारों का उसका मंथन करना। तो प्रश्न है कब मंथन करें, कैसे मंथन करें, क्यों मंथन करें, किस विधि से करें, कहां करें, अपने लिए या दूसरों के लिए भी मनन अगर करके आते हैं तो अच्छा ताजा ताजा भोजन दूसरों को दे सकते हैं, अभी अभी मनन किया होगा एकदम हॉट तो दूसरों को मजा आएगा ना कि वो भी पूरा ना। तो कैसे करे चिंतन, एक तो एकांत चाहिए चिंतन के लिए, अभ्यास होने के बाद भीड़ में भी हो सकता है परंतु पहले पहले एकांत फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में कैसे करे, प्रश्न उत्तर के द्वारा, ऐसे सोचे कि कोई अज्ञानी पूछ रहा है, अभी ये आया कोई अज्ञानी हमारे पास आ रहा है और हमसे पूछता है कि शक्तिशाली कैसे बने, अभी उसको आंसर देना है, तो इस तरह से प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर के द्वारा शक्तिशाली बना जा सकता है। कोई आकर पूछे कि भाई आपकी संस्था में पवित्रता का क्यों महत्व है, अभी हमें पता है पवित्र पवित्रता हमने धारण कर ली है परंतु उसको उत्तर देना, इसके लिए यथार्थ उत्तर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब हमारे मन में बिखरा पड़ा है सब कुछ, उससे निकालकर यथार्थ उत्तर। सफेद क्यों पहनते हो, हम पहन तो लिया है, दूसरा पहनने का संकल्प नहीं है परंतु अभी कोई व्यक्ति बाहर से आके पूछ रहा है सफेद क्यों पहनते हो, तो हमारे पास यथार्थ उत्तर के लिए पहले से चिंतन किया होगा, नहीं तो हम जो उत्तर देंगे वो ऐसे ही होगा कुछ तो ना, तो वो संतुष्ट नहीं होगा, भले आपने धारणा है परंतु हम उत्तर उसको नहीं दे सकेंगे। कोई भी आके कहता है कि यहाँ ये ऐसा क्यों, संस्था का परिचय हमें पता है, संस्था इसमें हम है परंतु कोई कहे कि संस्था का परिचय तो खड़े रहेंगे, खर्चे कैसे, माल कहां से आता है, इसका उत्तर हमें पता है परंतु उसको कैसे दे, इसके लिए पहले से चिंतन चाहिए।
यहाँ प्रश्न पूछने वाले हम ही हैं और उत्तर भी हम ही थे। स्वयं ही स्वयं को प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न पूछो कि शक्तिशाली कैसे बने। उत्तर हमने दिया मनन से, मनन कैसे करे, प्रश्न उत्तर निकाल के एकांत में करे। कहाँ करे मनन, कहाँ बैठकर करे मनन, प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में। जितना हम प्रकृति के सानिध्य में हैं उतना मनन शक्तिशाली होगा। कमरे में बैठकर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, परंतु जो प्रकृति के सानिध्य मनन होता है उसमें बुद्धि खुल जाती है, विचार उड़ने लगते हैं, उड़ान भरते हैं विचार, तो वो जो मनन होता है वो और शक्तिशाली होता है। तो कहाँ करे, कब करे मनन, सुबह और शाम, ये दो समय है मनन करने का। अमृत वेले के बाद श्रेष्ठ मनन किया जा सकता है या शाम में किया जा सकता है, दिन भर भी किया जा सकता है, परंतु सुबह और शाम का श्रेष्ठ समय है। कब करे, कहाँ करे, कैसे करे, किस विषय पर करे, मुरली में जो जो सब्जेक्ट आते हैं उन उनको निकाल के करे। जैसे कल की मुरली में आया एकांत की जरूरत है याद के लिए, उस पर एकांत का क्या महत्व है। एक दूसरा सब्जेक्ट था शिथिल था, उनमें आ गए तुम हो शिथिल, साइलेंस साइंस, तुम योग बल वाले हो, तुम्हें बाहुबल वालों की कहानियां पढ़ने की क्या दरकार। ऐसे ऐसे पॉइंट है, टाइम वेस्ट नहीं करो। रात्रि क्लास में था एक पॉइंट, कहां टाइम वेस्ट होता है, क्यों टाइम वेस्ट होता है, कैसे इस टाइम वेस्ट को बचाओ, चिंतन। तुम्हारे अंदर में खुशी की टालियां बजती रहनी चाहिए, तो बजना बंद क्यों हो गई, आवाज कहां गया, आवाज मध्यम क्यों हो जाता है, आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, कौन सी ऐसी बातें आ गई ये श्रवण शक्ति कहां चली गई, कम हो गई हमारी, या वो आवाज मध्यम हो गया, या आवाज खत्म हो गया, क्या हुआ कि टालियां बजना ही बंद क्यों हो गई, किसने कम कर दिया। तो ये चिंतन है। बाबा ने कल कहा किसी दूसरे की तीन बातें नहीं करो, बीती हुई बातें, कमजोरी की बातें, और चौथी तीसरी व्यर्थ बातें। व्यर्थ बातें, कमजोरी की बातें और बीती हुई बातें, क्या नहीं करो, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ की माला। तुमको तो रहम दिल बनना है, तुमको तो संभाल लेना है। तो ये एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट निकालना, उनका अध्ययन करना, उसका चिंतन करना, और चिंतन से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो दूसरा था मनन, चिंतन, तीसरा, बस तीन ही पॉइंट लेंगे हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। एक तो समान, दूसरा मनन, और तीसरा सर्वश्रेष्ठ धारणा यज्ञ की संपूर्ण पवित्रता। जो आत्मा जितनी पवित्र है वो उतनी शक्तिशाली है। जिसमें जितनी पवित्रता को निकाल के हम दूसरा शब्द रखेंगे ब्रह्मचर्य, जो जितना ब्रह्मचर्य में स्थित है वो उतना शक्तिशाली है। जिसमें ब्रह्मचर्य की धारणा जितनी अखंडित है वो उतनी शक्तिशाली। जिसमें ब्रह्मचर्य बार बार खंडित होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति का नाश होता है, वो आत्मा की पावर स्वतः ही कम हो जाती है। क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्य है वहां एकाग्रता है, जहाँ एकाग्रता है वहां विद्यार्जन स्वतः ही होता है। ज्ञान, ज्ञान हम बहुत तेजी से अर्जित कर सकते हैं, पॉइंट्स तुरंत ध्यान में आती है। जितनी प्योरिटी की पावर कम, उतनी एकाग्रता कम, उतना ज्ञान कम, उतना मनन कम, और उतनी आत्मा कम शक्तिशाली। तो ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ धारणा से आत्मा शक्तिशाली होगी। जितनी आत्मा में पवित्रता का बल होगा उतनी ही वो शक्तिशाली होगी। तो इसके ऊपर चिंतन, फिर ब्रह्मचर्य से क्या होता है, क्योंकि जो धारण करना है हमें उसके बारे में हमें ज्ञान चाहिए। शारीरिक रीति से क्या होता है, मानसिक रीति से क्या फायदे हैं, बौद्धिक रीति से क्या फायदे हैं, नैतिक रीति से क्या फायदे हैं, आर्थिक रीति से क्या फायदे हैं, समाज की रीति से क्या फायदे हैं, राष्ट्र को क्या फायदे हैं उसके, विश्व को क्या फायदे हैं उसके, सारा ही चिंतन, चिंतन की धारा चले, भगवान को सबसे ज्यादा पहले अध्यात्म में आ जाएगा। तो पहला समान, दूसरा मनन, हर दिन लक्ष्य रखना है कि हमें कुछ समय मनन में देना है, केवल योग ही करते नहीं रहना, या कभी कभी योग में बैठते हुए भी मनन किया जा सकता है। एक तो प्रकृति के सानिध्य में, और दूसरा योग जब हम कर रहे हैं किसी दूसरे समय पर, अमृत वेला नहीं, अमृत वेले के बाद का योग, या इस क्लास के बाद का योग, या शाम का योग के बाद, या दोपहर में हम कभी बैठते हैं तब। कल बाबा ने यह भी प्रश्न पूछा था, कौन सा योग अच्छा लगता है, चलते चलते याद ज्यादा रहती है या बैठे बैठे याद ज्यादा रहती है। तो योग से भी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो योग में भी चिंतन, योग में चिंतन, दूसरा एक योग का, एक तो योग है जो हम जिसमें शरीर से निकलकर बाहर जाते, दूसरा है समान का, केवल योग में समान का अभ्यास, जैसे बैठे और संकल्प किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे अनंत शक्तियों की किरणें संपूर्ण शरीर में जा रही है, शरीर से किरणें निकलकर अब सारे विश्व में फैल रही है, छोटा सा संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और मुझसे शक्तियों की किरणें अंग अंग से दूर फैल रही है, ये भी योगी है। पर समान, ये समान वाला योग, तो योग में भी समान का अभ्यास और योग में चिंतन, चिंतन भी एक तो ज्ञान का चिंतन, या फिर रूढ़ियान भी आता है उससे, बाबा से रूढ़ियान करना या खुद से बातें करना, खुद ही स्वयं को प्रश्न पूछो और खुद ही स्वयं को उत्तर, प्रश्न पूछना उत्तर देना, प्रश्न पूछना जैसे मोनो एक्टिंग होती है ना, दो लोग, एक ही व्यक्ति दो का ब्लॉक प्ले करता है, एक ही पूछते हैं अरे तुम क्या, जैसे हमारी किताब है जगदीश भाई की लिखी हुई गुणों की, उसका नाम क्या है, गुणों का गुलदस्ता, उसमें दिव्य गुणों का गुलदस्ता, उसमें कैसा है ब्रह्मा कुमारी और जिज्ञासु, जिज्ञासु पूछता है आपकी संस्था में ये अंतर्मुक्ता का क्या महत्व है, तो उसने कितना विस्तार किया, उसने चार बड़ी बड़ी बहुत बड़ी डेफिनेशन दी अंतर्मुक्ता की, फिर उसने पूछा अंतर्मुक्ता की क्या जरूरत है, उसने पूछा गंभीरता की क्या जरूरत है, अगर गंभीर हो जाएंगे तो तुम तो रुके सुखे हो जाएंगे, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, जैसे रामनाथ भाई हमेशा कहते हैं ना, मैं कौन, मैं कहां से, मैं किसका, कहां रहती हूँ, इस तरह से मन पूछे और बुद्धि जवाब दे तो व्यर्थ नहीं चलेगा, तो दोनों बिजी रहते हैं उसमें, मन और बुद्धि, खाली योग में ही नहीं, सब कोई भी पॉइंट में, जैसे अभी मास्टर सर्वशक्तिमान एक शब्द है, हमने यहाँ से इसको उठाया, क्यों मास्टर सर्वशक्तिमान, किसने कहा, कब कहा, सारे प्रश्न आ जाएंगे उसको, कब कहा, संगम युग पर कहा आकर, कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, किसको कहा, अच्छा सही में हूं या ऐसे ही कह रहा है, कुछ तो होगा, उसने कह रहा है, वो कह रहा है, चिंतन, जब तक चिंतन की धारा नहीं चलेगी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, बुद्धि भटकती रहती है, भटकती रहती है, यहाँ वहां भटकने की उसको आदत ही बहुत है। तो एक तो क्या कहा बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिमान के बारे में, दूसरा माताओं को नशा रहता है कि जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, बाप ने ठाकुर बना दिया या बाप ने आगे कर दिया, और तीसरा बाबा ने कहा भाषाओं के बारे में, भाषा के लिए क्या कहा, वहां हिंदी भी सीख रहे हो, स्थूल पढ़ाई भी हो रही है और रूहानी पढ़ाई भी हो रही है, तो हर एक को हिंदी भी जानना है, क्यों जानना है हिंदी, क्योंकि भगवान उस भाषा में बोल रहा है, तो जो उसकी भाषा है उस भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा उसके भावों को समझने के लिए, वो किस, जो ट्रांसलेशन भी समझा जा सकता है या थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, पर वो जिस भाषा में बोल रहा है उसकी जो भाषा है उससे ज्यादा से ज्यादा फैमिलियर होना पड़ेगा, उसके शब्दों को जानना पड़ेगा, वो उन शब्दों का प्रयोग किस अर्थ से कर रहा है, संसार में शायद वही अर्थ शब्द प्रयोग किए जाते पर किसी दूसरे अर्थ से, वो किस अर्थ से कर रहा है वो समझना। और लास्ट में क्या कहा, लगन है स्नेह अच्छा है, कितना स्नेह है, सागर भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, कितना स्नेह है, जितना जो स्नेह में रहता है उतना ही बाप द्वारा पदम गुना स्नेह प्राप्त हुआ अनुभव करता है, अच्छा सभी उमंग उत्साह में होना, क्या से क्या बन गए, ये भी चिंतन का विषय है, हम पहले क्या थे और अब क्या है, क्या से क्या बन गए, पहले ये थे अब ये बन गए, पहले ये थे अब ये बन गए, तो इस तरह अपने मन को चिंतन में बिजी रखना है, मन बुद्धि को, तो ही वो व्यर्थ से मुक्त रहेगा, नहीं तो व्यर्थ संकल्प तो निरंतर अजस्त्र धारा बहती रहती है, व्यर्थ संकल्प होगी निरंतर अविरल धारा बहती रहती है, जाती रहती है, पर ज्ञान से ही उसे रोका जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।